नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। एक बार फिर हम साथ हैं ओशो रेडियो के द्वारा ओशो के म्यूजिकल ट्रेजर और मेडिटेटिव वॉइस से बने इस प्रोग्राम में। आज के एपिसोड में डिस्कोर्स संत सहजोबाई पर ओशो बोल रहे हैं। यह डिस्कोर्स लिया गया है बिन घन परत फुहार वॉल्यूम नंबर 1 से। प्रोग्राम में हम 35 मिनट्स के अराउंड डिस्कोर्स लेते हैं, बट ये डिस्कोर्स बहुत ही सुंदर डिस्कोर्स है, स्पेशली फीमेल सीकर्स के लिए। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
पुरुष और स्त्री दो आयाम हैं और दोनों के भेद को बारीक से पहचान लोगे तो सहजुबाई के पद स्पष्ट हो जाएंगे। तुम पुरुष के ढंग से उन्हें मत समझने की कोशिश करना, तुम भूल ही जाना कि तुम कौन हो, अन्यथा तुम्हारी धारणा बीच में बाधा देगी। राम तजू पर गुरु न बिसारू, ये सिर्फ स्त्री ही कह सकती है, क्योंकि राम तो दूर की धारणा है, कौन जाने हो न हो, किसने देखा राम वहां आकाश में है भी या नहीं। तो राम को हम छोड़ सकते हैं, निराकार को छोड़ सकते हैं, पर गुरु को नहीं छोड़ सकते। गुरु तो आकार में है, यहां मौजूद है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके शरीर की गंध मिलती, उसकी आंख से आंख में झांका जा सकता है, उसके हाथ को हाथ में लिया जा सकता है, उसके पैर दबाए जा सकते हैं, उससे हमारा कोई सेतु है, वो यथार्थ है। राम तजू पर गुरु न बिसारू, बड़ी हिम्मत की बात है, सिर्फ स्त्री कह सकती। फरीद भी थोड़े कपेंगे, कबीर भी थोड़े डरेंगे, वो कहेंगे राम तजू, अगर इस बात को भी कहेंगे तो किसी और ढंग से कहेंगे, इतना सीधा ना कह सकेंगे। स्त्री दो टूक है, वो ज्यादा लंबे चौड़े वक्तव्यों में और गोल गोल वक्तव्यों में नहीं उलझती, वो सीधी बात कह देती। तर्क का वहां जाल नहीं, वहां हृदय की सीधी अभिव्यक्ति। फिर राम को बुरा लगे या नहीं, ये भी सवाल नहीं। राम तजू पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, मैं गुरु के मुकाबले हरि को न निहार सकूंगी। गजब की बात है, परमात्मा को भी सहजो कह रही है कि मैं गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी, इसी सिंहासन पर तुम्हें ना बिठा सकूंगी। तुम होगे भले, तुम होगे सुंदर, तुम ही ने बनाया होगा संसार माना, लेकिन गुरु के मुकाबले तुम्हें ना बिठा सकूंगी। गुरु परमात्मा के ऊपर, पुरुषों ने भी हिम्मत की है तो ज्यादा से ज्यादा गुरु को परमात्मा के करीब ला सके, उससे ऊपर नहीं ले जा सके। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाऊं। सवाल उठ गया किसके पैर छूं, दोनों सामने खड़े। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए, तो मैं गुरु के ही पैर लगता हूं, लेकिन कारण क्या है पैर लगने का, क्योंकि तुम्हारी बलिहारी तुमने गोविंद को बता दिया। असली बात तो गोविंद है, पैर गुरु के लग रहे हैं वो, लेकिन बताने का, पैर लगने का कारण क्या है, कारण यह है कि तुमने गोविंद बता दिया। तुम्हारे बिना गोविंद का पता ना चलता, इसलिए तुम्हारे पैर छूते हैं, तुम साधन हो, गोविंद साध्य। ऐसे उन्होंने पैर तो गुरु के ही लगे, लेकिन इशारा साफ कर दिया कि गोविंद गुरु के ऊपर है। बड़ी होशियारी की कबीर ने, बड़ी राजनीति की, दोनों को राजी कर लिया। गुरु के पैर लग गए और कह दिया कि तूने गोविंद को बताया इसलिए तेरे पैर लगते, तो पैर लग के गुरु को राजी कर लिया, गोविंद को भी नाराज नहीं किया है, बल्कि गोविंद को भी प्रसन्न कर लिया कि लगता तो मेरे ही कारण है पैर। सहजो जो कह सकती है वो कबीर न कह सके, गुरु के सम हरि को न निहारू, न तुम्हें रख सकती हूं पूजा में, लेकिन गुरु के समान नहीं रख सकती, तुम्हें उसी सिंहासन पर न बिठा सकूंगी। जहां भी स्त्री ने प्रेम देखा वहीं परमात्मा है, फिर और कोई परमात्मा को उससे ऊपर नहीं रख सकती, असंभव है, क्योंकि प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं रखा जा सकता। कारण वो देती है, कारण बड़े प्रीतिकर है, हरि ने जन्म दियो जगमाही। समझना, कबीर ने भी कारण बताया कि मैं गुरु के पैर क्यों लग रहा हूं, क्योंकि तुमने गोविंद बताया। सहजो भी कारण दे रही है कि तुम्हें मैं गुरु के समान न रख सकूंगी, ये साफ कह देती हूं। कारण ये है, हरि ने जन्म दियो जगमाही, तुमने मुझे संसार में भेजा, इसके लिए कोई बड़ा आभार प्रकट करने की जरूरत नहीं। गुरु ने आवागमन छुटाई और गुरु ने मेरा संसार छोड़ा दिया। अब धन्यवाद किसको दूं, तुम्हें या गुरु को? तुमने किया क्या मुझे इस अंधकारपूर्ण पथ पर अकेला भेज दिया, इस अनजान बेबूझ राह पर पटक दिया? यही तुमने किया? गुरु ने क्या किया? उसने मुझे फिर से प्रकाश की राह पर लगाया, उसने फिर मुझे हाथ का सहारा दिया। जहां मैं अकेली थी वहां अकेला न रहने दिया। तुमने मुझे अकेला जंगलों में छोड़ दिया, उसने मुझे वापस राजपथों पर लाया। तुम किस मुंह से सोचते हो कि तुम्हें मैं गुरु के ऊपर रखूं? नहीं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जगमाही, ठीक है, स्वीकार है कि तुम ही जन्मदाता हो, लेकिन जन्म में पाया क्या? इस जीवन में मिला क्या? इस जीवन में सिवाय दुख के, संताप के, पीड़ा के और कुछ तो उपलब्धि ना हुई। इस दुखों के बोझ के लिए तुम्हें धन्यवाद दूं? स्त्री सुस्पष्ट है, पुरुष गोल गोल जाता है। गुरु ने आवागमन छुटाई, हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। तुमने पांच चोर साथ लगा दिए थे, वही तुम्हारी कृपा है अगर उसे कृपा कहे। पांच इंद्रियां पीछे लगा दी, वासनाओं का जाल लगा दिया, छूट छूट के मुश्किल हो गई, छूटना मुश्किल हुआ। तुमने बंधन में डाला, तुमने मुक्त नहीं किया, और तुमने अनाथ बना दिया था। तुम कहीं दूर छिटक गए, कौन मालिक है कुछ खबर न रही। इंद्रियों को ही मालिक समझ लिया, उनके ही पीछे दौड़ती रही, भागती रही। मृग मरीचिका में तुमने डाला, कितने मरुस्थलों में भटकाया। किस कारण तुम सोचते हो कि तुम्हें गुरु से ऊपर रखूं? गुरु ने मुझे छोड़ाया, मेरी अनाथ स्थिति से मुझे छोड़ाया, फिर मुझे सनाथ बनाया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। तुमने तो मुझे फेंक दिया जाल में, ये बड़े प्रेमपूर्ण उलाहने, ये परमात्मा से सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ दांव पेंच नहीं। यही कठिनाई है, स्त्री पुरुष के बीच जब भी बातचीत होती है तो बातचीत हो नहीं पाती, क्योंकि पुरुष दांव पेंच से बात करता, स्त्री सीधी बात करती। संवाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि पुरुष समझ नहीं पाता कि इतने सीधे कोई बात कैसे कही जा सकती है, और स्त्री समझ नहीं पाती कि इतना घुमाने की क्या जरूरत है, बात सीधी कहो। स्त्री की बात संक्षिप्त में पूरी हो जाती, पुरुष हजार ढंग से जो कहना है उसे छिपाता है और जो नहीं कहना है उसमें ढांकता है। गुरु ने काटी ममता बेरी, ये कोई बहुत बड़ा काव्य नहीं है, कबीर का काव्य बात और, फरीद के गीत की बात और, सहजुबाई के ये वक्तव्य कोई बड़े काव्य नहीं है, इनमें कोई बड़ी कविता नहीं है, पर इसमें सीधी चोट है, इसमें कोई बड़ी लफाची नहीं, कोई कला नहीं, सीधी सीधी बात है, एक साधारण शुद्ध हृदय स्त्री की बात है। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, तुमने कुटुंब का जाल बनाया, परिवार बसाया, संसार दिया, और सब तरफ से मुझे घेर दिया था। उसमें मैं तड़फती थी, उसमें कहीं कोई शरण न थी, उसमें कहीं कोई छाया न मिलती थी, सिर्फ धूप ही धूप थी, तड़फन ही तड़फन थी। गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने ममता की वो जो झाड़ झंखाड़ तुमने खड़े किए थे उन सबको काट दिया। नहीं, तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हें गुरु से ऊपर रख लूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, वो मैं न कर सकूंगी, वो असंभव है मुझसे होना, मैं तुम्हें समान न निहार पाऊंगी। तुम नाराज मत होना, नाराजगी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा जीवन का तर्क है। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। गुरु ने काटी ममता बेरी। ममता को हम थोड़ा समझ लें, यही तुम्हें फर्क धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। पुरुष जब भी कहेगा, अगर वो परमात्मा से प्रार्थना भी करेगा, तो यही कहेगा मुझे अहंकार से छुटाओ, क्योंकि पुरुष में अहंकार ही उसकी पीड़ा है। जब स्त्री कहेगी तो वो कहेगी मुझे ममता से छुटाओ। अहंकार स्त्री की पीड़ा नहीं, ममत्व उसकी पीड़ा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी साड़ी, मेरा गहना, वो जो मेरा भाव है। स्त्री के लिए अहंकार असली बीमारी नहीं है, मेरा भाव ममत्व बीमारी। पुरुष के लिए मैं और स्त्री के लिए मेरा। स्त्री का मेरा कट जाए तो उसका मैं गिर जाता है, पुरुष का मैं गिर जाए तो उसका मेरा कट जाता है। इसलिए पुरुष जब तक अहंकार से मुक्त न हो तब तक ममत्व से मुक्त नहीं होता, स्त्री जब तक ममत्व से मुक्त न हो तब तक अहंकार से मुक्त नहीं होती। इसलिए बात तो बड़ी सीधी और साफ है, गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने धीरे धीरे समझाया जगाया कि कोई मेरा नहीं, मेरा झूठ है, मेरा एक सपना है, मेरा केवल मन में उठी तरंगे, असलियत नहीं। जन्म के साथ हम अकेले आते हैं, कोई मेरा साथ नहीं होता। मृत्यु के साथ हम अकेले जाते हैं, कोई मेरा साथ नहीं होता। मेरे की बात ही संसार है। गुरु ने काटी ममता बेरी, हरि ने रोग भोग उर्झायो। तीन शब्द समझ लें, रोग भोग योग। रोग ऐसी दशा का नाम है आध्यात्मिक अर्थों में, जब व्यक्ति परमात्मा से बिल्कुल टूट जाता है। इसलिए हम रोग का अर्थ अस्वास्थ्य करते हैं। अस्वास्थ्य शब्द को ठीक से समझो तो रोग का अर्थ समझ में आ जाएगा। अस्वास्थ्य का अर्थ है जो स्वयं में स्थित ना रहा। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं स्थित, जो अपने में है, जो अपने स्वभाव में है वो स्वस्थ। जहां तुम स्वभाव के बाहर गए अस्वस्थ, अस्वास्थ्य रोग है। रोग का अर्थ है परमात्मा से सर्वाधिक दूरी। ये तीन शब्द दूरी के मापदंड हैं। रोग परमात्मा से अनंत दूरी, योग परमात्मा से कोई दूरी नहीं एकता, भोग मध्य में। रोग और योग के बीच में जो यात्रा है वो भोग की है। कभी कभी क्षण भर को परमात्मा से मिलन होता है, क्षण भर को मिलन होता है, वर्षों को छूटना हो जाता है। इसी को तुमने भोग कहा है। भोग का अर्थ होता है भोजन किया, एक क्षण भर को स्वाद की झलक आई, उस स्वाद में बड़ी तृप्ति लगी, उस तृप्ति के क्षण में तुम स्वभाव के करीब आए, तुम परमात्मा के करीब आए। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म। जब ऋषि भोजन करता है तो परमात्मा के करीब ही आता है, अन्न के करीब नहीं, अन्न के द्वारा ब्रह्म को ही जानता है, अन्नम ब्रह्म। तंत्र कहता है संभोग भी समाधि के करीब है। तंत्र के शास्त्र कहते हैं विषयानंद ब्रह्मानंद सहोदर। वो जो शरीर का संभोग है वो भी ब्रह्मानंद का भाई है, सहोदर, एक ही उदर से पैदा हुआ है। पर क्षण भर को संभोग की किसी गहन अवस्था में, जब सब चित्त के विचार खो गए होते हैं, जब तुम्हारा नियंत्रण भी खो गया होता है, जब परमात्मा तुम्हें पकड़ लेता है और तुम उसके ही हाथों में कपते हो और डोलते हो, जैसे तूफान में उलझे हुए वृक्षों के पत्तियां डोलती हैं, जब तुम न तो मालिक होते हो, न नियंत्रक होते हो, न कर्ता होते हो, तुम संभोग के एक क्षण में, क्षण से भी छोटे क्षण में डूब गए होते हो, खो गए होते हो। उस क्षण जो विश्वानंद है वो ब्रह्मानंद का सहोदर है, पर ये क्षण भर को होगा, फिर अनेक दिनों के लिए दूरी हो जाएगी। तो भोग करीब करीब योग के आता है, फिर छटक के रोग बन जाता है। भोग क्षणभंगुर योग है और फिर सदा के लिए रोग है। सहजो कहती है, हरिने रोग भोग उर्जायो, तुमने या तो रोग दिया, ज्यादा से ज्यादा भोग दिया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें न कह सकूंगी कि तुमने कुछ और दिया। हां, कभी कभी तुमने झलक दी, उस झलक से भी कुछ सुख न पाया, उससे दुख और घना हो गया। घड़ी भर को सुख पाया और बहुत घड़ियों के लिए दुख पाया। तुमने भोग दिया, रोग दिया, इसमें कुछ बड़ी महिमा मत समझो। गुरु ने गुरु जोगी कर सब छुटायो, गुरु ने योग दिया, रोग और भोग से छुटकारा दिया। जिसको योग मिल गया उसके मन से शरीर के भोग तो अपने आप खो जाते हैं, क्योंकि जब श्रेष्ठतर मिल जाए तो निकृष्ट अपने आप गिर जाता है। जब सार हाथ में आ जाए तो असार को कौन पकड़ता है, जब हीरे जवाहरात मिल जाएं तो कंकड़ पत्थर कौन बीनता है। योग को जिसने पा लिया उसका भोग तो विदा हो जाता है, और जिसका भोग विदा हो गया उसे परमात्मा से दूर जाने का कोई उपाय नहीं रह जाता। वही उपाय था जो रोग तक ले जाता था, भोग वाहन था वही रोग तक ले जाता था। भोग के विसर्जित होते ही रोग भी विसर्जित हो जाता है। इससे तुम ये मत समझ लेना कि संत पुरुष कभी रोगी नहीं होते। संत पुरुषों को रोग पकड़ता है, लेकिन संत पुरुष कभी रोगी नहीं होते। रामकृष्ण कैंसर से मरे तो अनेकों के मन में संदेह उठता है। रमण महर्षि भी कैंसर से मरे। महावीर की मृत्यु गहरी पेट की बीमारी पेचिस से हुई। बुद्ध विषाक्त भोजन करने के कारण शरीर में विष फैल गया, उससे मरे। महावीर मरने के 6 महीने तक पेचिस से बीमार रहे। सवाल यह है कि जो योग को उपलब्ध हो गए क्या उनको भी रोग होता है? उन्हें तो रोग नहीं होता, लेकिन शरीर बड़ी अलग बात है। महावीर अलग, शरीर अलग। तुम्हें शरीर बहुत एक मालूम होता है तुम्हारे साथ, महावीर का शरीर से भी उतना ही फासला हो गया है जितना रोग से, क्योंकि शरीर से भी जो संबंध था वो भी भोग का ही संबंध था। जिस दिन योग को उपलब्ध हुए वो संबंध भी टूट गया। शरीर अलग, आत्मा अलग, बीच के सब सेतु गिर गए, और इन सेतुओं के गिर जाने के कारण ही कभी कभी योगी पुरुषों का शरीर इतना रोगग्रस्त होता है जितना साधारण भोगियों का नहीं होता, क्योंकि शरीर को जीवन की ऊष्मा मिलनी बंद हो जाती। वो जो प्राणों का सहारा मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। वो जो तुम्हारा साथ मिलता था शरीर को वो बंद हो जाता। अब शरीर अपने ही बल चलता है, आत्मा का कोई बल उसे नहीं मिलता, बहुत लड़खड़ा जाता है। तो योगी पुरुष अक्सर बड़े रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, मगर वो तुम्हें दिखता है कि वो रोगों से ग्रस्त है, उन्हें नहीं दिखता, वो तो बिल्कुल रोग मुक्त है। रमन को कैंसर था, डॉक्टर कहते थे महापीड़ा का कारण होना चाहिए, लेकिन उनको किसी ने कभी उदास नहीं देखा, वे वैसे ही प्रसन्न रहे, उनका फूल वैसा ही खिला रहा, उसमें कोई भेद ना पड़ा, उनके पास की गंध वैसी ही बनी रही जैसे कुछ भी ना हुआ है। चिकित्सक, बड़े बड़े चिकित्सक पास आते, वो कहते कि इस घड़ी में तो महान पीड़ा होती है कि मार्फिया के इंजेक्शन देना पड़े तो ही आदमी पीड़ा से बच सकता है, लेकिन इनको क्या है, ये परिपूर्ण होश में है, कहीं कोई भेद नहीं पड़ा है। जैसे कैंसर कहीं दूर घट रहा है, अपने से कुछ लेना नहीं, जैसे किसी और को हुआ है। रामकृष्ण के कंठ में कैंसर था, भोजन जाना बंद हो गया था, पानी भी न पी सकते थे। एक दिन विवेकानंद ने पैर पकड़ के कहा कि परमहंस देव, पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती, आपको नहीं है पीड़ा, हमें पता है, लेकिन हमसे नहीं देखी जाती, हम अज्ञानी हैं। आप हमारे लिए इतना करो कि मां से प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए नहीं कहते, हमारे लिए करो कि हमें पीड़ा ना हो। उन्होंने कहा तो ठीक, आंख बंद की, फिर खिलखिला के हंसने लगे। उन्होंने कहा मैंने मां को, लेकिन मां ने कहा कि इस शरीर से तो तू बहुत पानी पी चुका और बहुत भोजन कर चुका, अब बाकी शरीरों से पानी पी और बाकी शरीरों से भोजन कर। तब विवेकानंद, अब जब तू भोजन करेगा मैं तुझसे भोजन करूंगा, तेरे कंठ से पानी पीऊंगा। जिसका अपने शरीर से संबंध टूट गया उसका सबकी आत्मा से संबंध जुड़ गया, वो ब्रह्म के साथ एक हो गया। उस योग एक होने का नाम योग है। योग का अर्थ होता है जुड़ जाना, एक हो जाना, जहां दो मिट जाते और अद्वय पैदा हो जाता है, वहां रोग तो असंभव है। भीतर का रोग, शरीर के रोग बहुत संभव है, थोड़े जरूरत से ज्यादा ही संभव है, क्योंकि शरीर बड़ा बेसहारा छूट जाता है। जीवन की आकांक्षा तो समाप्त हो गई, जीने की कोई इच्छा न रही, जीने का कोई भाव न रहा। योगी तो ऐसे जीता है कि ठीक है जीना पड़ता है इसलिए जीता है, जब तक जीता है जीता है, जिस क्षण सांस टूटेगी तैयार है। अपनी तरफ से तो सांस लेनी छोड़ ही दी, अब तो परमात्मा को ही लेना हो तो लेता रहे, अब तो शरीर यंत्रवत चलता है, शरीर को सहारे मिट जाते और एक भीतर एक तरह की लापरवाही आ जाती शरीर के प्रति, एक उपेक्षा आ जाती, एक शून्य भाव पैदा हो जाता है, ममता टूट जाती। तो कभी कभी बड़े रोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन भीतर तो रोग असंभव हो जाता है। भीतर तो रोग तभी तक संभव है जब तक भोग संभव है, भोग की छाया है रोग, भोग का अनुगमन है रोग, भोग के पीछे छिपा आता है रोग। कहती है सहजो हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो, नहीं तुझे हम गुरु के साथ ना रख सकेंगे। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, सपने तूने दिए, कर्म का भाव दिया, कर्म की वासना दी, कर्ता का पागलपन दिया, न मालूम कितने भर्मों में भरमाया, कितने जन्मों तक भटकाया। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने जगाया और कहा कि कर्म तू नहीं है, कर्ता तू नहीं, कहा तू तो मात्र अस्तित्व है। गुरु ने अपने प्रति जगाया, तूने दूसरी चीजों के प्रति वासना से भरा, कभी धन कभी पद कभी प्रतिष्ठा, तूने दौड़ाया न मालूम कितने लक्ष्यों की ओर, गुरु ने सब लक्ष्य काट दिए, तीर को भीतर की तरफ मोड़ दिया, कहा जाग और अपने को जान। गुरु ने आत्म रूप लखायो, नहीं गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। हरि ने मौसू आप छिपायो, और हद कर दी तूने, संसार में भटकाया भटकाया अपने को भी मुझसे छिपा लिया। हरि ने मौसू आप छिपायो, गुरु दीपक दीपक देता ही दिखायो, और गुरु ने दिया दिया ध्यान का प्रार्थना का समाधि का, तेरे पर्दे हटाए, तू अंधेरे में छिपा था रोशनी थी, गुरु ने तुझे प्रकट किया, गुरु ने तुझे आमने सामने किया। हरि ने मौसू आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो, फिर हर बंधी मुक्ति गनी लाए, तुमने ही संसार में बंधन और मुक्ति पैदा किए, तुमने ही बांधने छोड़ने का उपद्रव उठाया, जन्म और मरण दिए, गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। ये वचन बहुत क्रांतिकारी है, इसे थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें। साधारणतः लोग सोचते हैं जब बंधन मिट जाते हैं तो आदमी मुक्त हो जाता है, लेकिन जब बंधन मिट जाते हैं तो वस्तुतः मुक्ति भी मिट जाती, क्योंकि मुक्ति तो बंधनों का ही हिस्सा है। जहां जंजीरें गिर गईं वहीं स्वतंत्रता भी गिर जाती। स्वतंत्रता का ख्याल तो जंजीरों के कारण पैदा होता है। एक आदमी कारागृह में बंद है, तो वो सोचता है मुक्त कब हो जाऊंगा। तुमने कभी सोचा है कारागृह के बाहर कि धन्यवाद परमात्मा कि हम मुक्त हैं? तुम कभी सोचते नहीं मुक्ति की बात। कारागृह में बंधा हुआ आदमी सोचता है मुक्त कब हो जाऊं। बाहर था तब उसने भी ना सोचा था कि मुक्त हूं, बड़ा धन्यभागी हूं। बंधन से मुक्ति का भाव पैदा होता है। तो बंधन और मुक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर हरि बंधी मुक्ति गनी लाए, तुमने ही बंधन मुक्ति दोनों को लाए। गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। गुरु ने बंधन तो तोड़े ही, मुक्ति भी तोड़ डाली, वो भी एक भ्रम था। गुरु ने संसार से ही मुक्त न किया, मोक्ष से भी मुक्त कर दिया। गुरु ने परम मुक्त कर दिया, अब कोई मोक्ष भी नहीं। साधारणतः मनुष्य का मन द्वंद्व में सोचता है। तुम सोचते हो संसार बंधन तो मोक्ष कहीं होगा, जब संसार छोड़ दोगे तो मोक्ष की उपलब्धि होगी। लेकिन जिस दिन संसार छूट जाता है उसी दिन मोक्ष भी छूट जाता है। और जब तक मोक्ष भी न छूट जाए तब तक तुम मोक्ष को उपलब्ध ही न हुए। तुमने कभी ख्याल किया, जब तुम बीमार पड़ते हो तो स्वास्थ्य की कामना पैदा होती, जब तुम स्वस्थ रहते हो तब न तो बीमारी का पता चलता और न स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का क्या कोई पता चलता है? सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, जब सिर में दर्द नहीं होता तब तुम्हें सिर का पता चलता है। तुम्हें कभी पता चलता है कि सिर बिल्कुल स्वस्थ है? जब सिर बिल्कुल स्वस्थ होता है तो सिर का पता ही नहीं चलता, स्वास्थ्य का पता कैसे चलेगा? संस्कृत में दुख के लिए जो शब्द है वो वेदना है। वेदना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उसके दो अर्थ होते हैं, उसका एक अर्थ होता है दुख और एक अर्थ होता है ज्ञान। उसी शब्द से तो वेद बना है, विद, विद्वान बना है। वेदना का अर्थ है ज्ञान और वेदना का अर्थ है दुख। सिर्फ दुख का ही ज्ञान होता है, सुख का कोई ज्ञान होता है? इसलिए शब्द बड़ा कीमती है। तुम्हें जब सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, पैर में कांटा गड़ता है तो पैर का पता चलता है, जीवन में पीड़ा होती तो जीवन का पता चलता है। अगर सब पीड़ा मिट जाए, कोई दुख ना हो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? शरीर की परिपूर्ण स्वस्थ अवस्था विदेह होगी, देह का भी पता ना चलेगा। छोटे बच्चों को देह का पता नहीं चलता, उन्हें पता ही नहीं होता कि देह भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे मुसीबतें आती हैं देह का पता चलना शुरू हुआ। बूढ़े आदमी को पता चलता है देह का, उसको देह का ही पता चलता है। उठता है तो पता चलता है, बैठता है तो पता चलता है, भोजन करता है तो पता चलता है, स्नान करता है तो पता चलता है, सांस लेता है तो पता चलता है, कोई बात करता है तो पता चलता है क्योंकि कान ठीक से सुनते नहीं, कोई सामने आता है तो पता चलता है क्योंकि आंख ठीक से देखती नहीं। वृद्ध को शरीर ही शरीर का पता चलता है, बच्चे को शरीर का कोई पता नहीं चलता। स्वास्थ्य का कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान भी एक तरह की बीमारी, बोध भी बीमारी का हिस्सा है। वेदना और वेद दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। हरि ने तो मुक्ति दी, बंधन दिए, संसार दिया, मोक्ष दिया। गुरु ने सभी भ्रम मिटाए, उसने संसार से तो छुड़ाया ही, मोक्ष से भी छुड़ाया। चरण दास पर तन मन वारूं। सहजोबाई चरण दास की भक्त थी। चरण दास एक अद्भुत फकीर हुए, कभी उनकी भी बात करेंगे। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। परमात्मा ही मिल गए हैं गुरु के चरणों में। चरण दास पर तन मन वारूं, सब उन पर निछावर है। गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। जैसे चरण दास में सारा परमात्मा साकार हो उठा है, और गुरु में जब तक सारा परमात्मा साकार न हो उठे तब तक गुरु भाव पैदा ही नहीं होता, तब तक तुम गुरु में गुरु को देख ही ना पाओगे। अगर तुम्हें गुरु में पूरा परमात्मा न दिखे तो उतनी ही तुम्हारी श्रद्धा की कमी रह जाएगी। पर असंभव है, पुरुष के लिए बहुत असंभव है, बड़ी साधना से संभव है, स्त्री के लिए बिल्कुल सुगम है। इसलिए एक घटना घटी है मनुष्य के इतिहास में, पुरुषों जैसे गुरु नहीं हुए, स्त्रियों जैसे शिष्य नहीं हुए। महावीर बुद्ध, इन जैसे गुरु खोजना मुश्किल है, या चरणदास, फरीद, कबीर, सहजो, मीरा, दया, राबिया, थेरेसा, इन जैसी शिष्याएं खोजना मुश्किल है।
आज के प्रोग्राम में म्यूजिक मिलोरेपा, म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से और संदीप चिन्मय डेंस्टर की एल्बम से लिया गया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
गुरु का मतलब है जो दूसरे को रास्ता बता सके, दूसरे को रास्ता सिखा सके। इसे थोड़ा समझ लो, प्रेम तो सिखाया नहीं जा सकता किसी को, ध्यान सिखाया जा सकता। तो जिसने ध्यान से पाया है वो सिखा सकता है कि ये रास्ता है, ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अहंकार गिर जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। ध्यान का तो शास्त्र बन सकता है, ध्यान विधि है, प्रेम का कोई शास्त्र नहीं बन सकता। प्रेम कोई विधि थोड़ी है। प्रेम तो हो जाए तो हो जाए, न हो तो न हो, किए से क्या होगा। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर प्रेम की उठती हो किरण तो दबाना मत, फिर ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम ही सब संभाल लेगा। अगर न उठती हो प्रेम की किरण और तुम एक रूखे मरुस्थल हो जहां प्रेम का कोई बीज नहीं टूटता, कोई अंकुर नहीं आता, तो फिर तुम ध्यान संभालना, फिर ध्यान के अतिरिक्त तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं। ध्यान से जो गए हैं वे तो गुरु बन सकते हैं, प्रेम से जो गए हैं उन्होंने शिष्यत्व में ही सब कुछ पा लिया, और प्रेम से जो गए हैं वो दूसरे को सिखा नहीं सकते। सिखाने का मामला नहीं, सिखाने की बात नहीं, प्रेम कोई कला थोड़ी है। प्रेम तो जीवन का अंतरतम भाग है। साहसी पहुंच जाते हैं क्षण में, सीखने का सवाल नहीं है, डूबने का सवाल है। जैसे कि नदी में कोई तैरता हो तो तैरना तो सिखाया जा सकता है, तुम किसी को डूबना सिखा सकते हो? डूबना सिखाने की क्या जरूरत, जिसको डूबना है वो डूब सकता है। अभी तुम ये थोड़ी कहोगे कि पहले साल भर डूबना सीखेंगे तब डूबेंगे। अगर साल भर डूबना सीखा तो फिर कभी डूबोगे ही नहीं, क्योंकि डूबना सीखने में तो तुम तैरना सीख जाओगे। डूबना तो अभी हो सकता है, हाँ तैरना साल भर सीखने में होगा। ध्यान तैरने जैसा है, सीखना पड़ेगा। प्रेम डूबने जैसा है। अहंकार को मिटाना है समय लगेगा, अहंकार को झुकाना है अभी झुका सकते हो। अहंकार मौजूद है, सिर्फ झुकाने की बात है। स्त्रीण चित्त सरलता से झुक जाता है। स्त्रियां ऐसे हैं जैसे वृक्षों पर चढ़ी हुई लताएं, झुकाव आसान है। वृक्ष को झुकना मुश्किल है, लता को झुकने में क्या लगता है। इसलिए सहजोबाई का पहला सूत्र ठीक से समझ लो, वो सूत्र है प्रेम का। और ये मत सोचना, नहीं तो गलती हो जाएगी कि वो ईश्वर के विपरीत बोल रही है, भूल हो जाएगी। वो बड़े प्रेम से बात कर रही है, वो ये कह रही तुमने दिया भी क्या है, अब तुम नाहक बड़े सिंहासन पर विराजमान होने की कोशिश मत करो। ये बड़े प्रेम का उल्हायना है, कब तुम थोड़े नीचे बैठो गुरु से। ये बड़ी प्रेम की वार्ता है। कबीर के मन में तो थोड़ा सा डर भी होगा कि ऐसी बात कहें या नहीं ना कहें, लेकिन प्रेम कहीं डरता है। इसलिए हिम्मत से सहजो कहती, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। तुम ये मत सोचना कि वो कोई नास्तिक है, उस जैसा परम आस्तिक खोजना मुश्किल। ये तो आस्तिक ही कह सकता है, नास्तिक क्या खाक कहेगा, उसकी इतनी हिम्मत कहां होगी। ये तो वही कह सकता है जो जानता है हृदय की गहराई में कि गुरु में उसने परमात्मा को पा ही लिया है, जो जानता है कि परमात्मा उपलब्धि हो गया है वही ऐसी मीठी वार्ता कर सकता है उलाहने की। ये तो भक्त का और भगवान का रूठने का खेल है। वो ये कह रही कि छोड़ो भी, ज्यादा मत अकड़ो, तुमने कुछ दिया नहीं है, ऐसा संसार दिया, बंधन दिए, वासनाएं दी, अनाथ कर दिया, अंधेरे में फेंक दिया, गुरु ने उठाया है, अब मुझसे ये ना होगा कि तुमको ऊपर बिठा लूं, अब तुम थोड़े नीचे ही बैठो। और मैं मानता हूं कि अगर परमात्मा सहजों के सामने उपस्थित होगा तो वो सहजों का आदर करेगा, गुरु से थोड़ा नीचे बैठेगा। इसलिए नहीं कि वो नीचा है, इसलिए कि वो जानता है उसके नीचे होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए नहीं कि वो नाराज होगा, बल्कि वो जानता है कि बड़े प्रेम से कही गई बात एक झिड़की है, प्रेम का उलाहना। और सहजो उसे नीचे बिठाने को नहीं कह रही, सहजो उसे कैसे नीचे बिठा लेगी थोड़ा सोचो। जो अपने गुरु को परमात्मा से नीचे नहीं बिठा सकती, वो परमात्मा को गुरु से नीचे बिठा सकेगी? असंभव। पर प्रेमियों की बात को तुम तर्क से मत तौलना। प्रेमी कहते कुछ हैं, कहना कुछ और चाहते हैं। प्रेमी कहते कुछ है और हैं, कह कुछ और देते। प्रेमियों का वार्तालाप बड़ा परोक्ष है। सहजों को अगर संक्षिप्त में हम कर लें तो वो ये कह रही है कि तुम मेरे गुरु में विराजमान ही हो गए हो, अब और गुरु से अतिरिक्त और पृथक तुम्हें देखने का कोई उपाय नहीं। या तो गुरु परमात्मा हो गया है या परमात्मा गुरु हो गया है। आज इतना ही।
Oh, Nani। Thank you.